हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ऋषभ ने जानबूझकर समर को चिढ़ाने के लिए ये सवाल किया। समर ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम कौन सा मेरी बात सुनने वाले हो? और ठीक है, अब अगर आई गए हो तो यहाँ द कोजी कॉर्नर कैफे आ जाओ। ट्रिपल सी के नाम का बड़ा सा येलो पिंक कलर का बोर्ड है, मैं यहीं पर हूँ। ऋषभ ने बड़े ध्यान से कैफे का नाम सुना और तुरंत अपने ड्राइवर को भी बता दिया। उसे तो वहाँ की ऐसी छोटी मोटी जगहों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसका ड्राइवर जानता होगा। इसीलिए जैसे ही ऋषभ ने उसे वहाँ चलने के लिए बोला, ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी, जो पिछले 10-15 मिनट से वहाँ कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी थी। कार स्टार्ट करते ही ऋषभ ने कॉल पर कहा, ओके, मैं बस आता हूँ, तुम वहीं पर वेट करना। इतना बोलते हुए ऋषभ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। समर भी आगे कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, कुछ करना पड़ेगा इस लड़के का, ये तो सर पर ही चढ़ता जा रहा है। भाभी का भाई है इसीलिए कुछ बोलता नहीं हूँ मैं बस। समर अपने आप से बात करता हुआ ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। समर एकदम चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मीरा खड़ी थी और उसके हाथ में कॉफ़ी का डिस्पोजेबल कप था। समर काफ़ी देर से वहाँ पर था, इसीलिए मीरा उसकी कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई थी। उसने कहा, ये तुम इतनी देर से आ ही नहीं रहे थे, तुम्हारी कोल्ड कॉफ़ी पूरी गर्म हो गई और मैंने सोचा मैं लाकर तुम्हें दे देती हूँ। वैसे भी मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया है तो मुझे जाना भी था, मैं और देर तक नहीं बैठ सकती यहाँ और मैंने बिल भी पे कर दिया है। मीरा ने मुस्कुराकर उसे कॉफ़ी पकड़ाई। इस पर समर ने कहा, ओ सॉरी, मैं फ़ोन पर बिजी हो गया था, तुम्हें इतनी देर अकेले बैठना पड़ा, और तुमने बिल क्यों दे दिया? मैं बस। इस पर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं समर, तुम करण के भाई हो तो मेरे भी तो छोटे भाई जैसे ही हो, अगर मैंने तुम्हारा बिल दे भी दिया तो क्या? इतना बोलते हुए मीरा ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरा। समर को उसका छोटा भाई कहना जरा भी रास नहीं आया और उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसी वक्त ऋषभ की कार वहां आकर कैफे के सामने सड़क की दूसरी साइड पर रुकी। उसने समर को एक लड़की के साथ खड़े होकर बात करते हुए देखा। वो लड़की उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे एग्जैक्टली याद नहीं आया कि वो उसे कब और कहाँ पर मिला है। लेकिन वो समर के साथ क्या कर रही है और दोनों आपस में बात करते हुए काफ़ी फ्रेंडली लग रहे थे। ये देखकर ऋषभ को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने जैसे अपने आप को समझाते हुए कहा, उसकी कोई दोस्त होगी, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ इस बारे में, और वैसे भी उसने तो खुद ही मुझे यहाँ बुलाया है ना। इतना सोचते हुए ऋषभ ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अपनी कार से बाहर निकलकर सीधा उस कैफ़े की तरफ बढ़ा। लेकिन तब तक मीरा वहाँ से आगे जा चुकी थी और समर अपने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी ऋषभ एकदम से उसके सामने आकर खड़ा होकर बोला, कौन थी वो, और वैसे भी चली गई, अब तो किकर देख रहे हो? मीरा, मेरा मतलब है भाई की बेस्ट फ्रेंड है मीरा, वो वहाँ पर उस शोरूम में काम करती है, और तुम मिल तो चुके हो उससे, फिर ऐसे क्यों पूछ रहे हो जैसे उसे पहली बार देखा हो? उसी तरह खोया हुआ सा समर ऋषभ की बात का जवाब देते हुए बोला और फिर उसने ऋषभ की तरफ देखा। समर की बात सुनकर ऋषभ ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा, कहाँ पर काम और कौन मीरा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक से बताओ ना समर, ऋषभ ने एकदम अनजान बनते हुए पूछा। तो समर ने बात टालते हुए कहा, रहने दो, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम फिर भूल जाओगे, कौन सा तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये? समर ने उसे इस बारे में नहीं बताया तो ऋषभ का मुंह बन गया। उसने थोड़ी नाराज़गी से कहा, ठीक है मत बताओ, मुझे भी जानने का कोई शौक नहीं है, लेकिन चलो अब तो टाइम भी हो गया है। देखो वैसे ये कैफ़े, तुम उसके साथ यहाँ कॉफ़ी पीने आए थे क्या? ऋषभ ने फिर से वही सवाल किया। उसके लगातार सवालों से इरिटेट होकर समर वहाँ से आगे बढ़ते हुए बोला, बहुत सवाल करते हो तुम, चलो चुपचाप, नहीं तो और लेट हो जाएगा। इतना बोलते हुए समर ऋषभ से पहले ही वहाँ से आगे चलते हुए सड़क के उस साइड पर आया जहाँ पर ऋषभ की कार खड़ी थी। वहाँ आकर वो बिना उसका इंतज़ार किए खुद से ही उसकी कार में बैक सीट पर बैठ गया। फिर ऋषभ भी उसके पीछे पीछे वहाँ कार के अंदर आया और उसके साथ ही बैठ गया। समर के साथ ऋषभ ने पिछले दिन सारी बातें सुलझा ली थीं और फिलहाल इधर उधर की बातें छोड़कर वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था और काफ़ी खुश भी था। सारी बातें क्लियर होने के बाद पढ़ाई के साथ साथ उन दोनों ने साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताया और ऋषभ ने भी समर की सारी बातें मानते हुए पढ़ाई पर ध्यान दिया। समर के वहाँ से चले जाने के बाद भी उस दिन ऋषभ का मूड काफ़ी अच्छा रहा और उसी रात को उसने सभी के साथ बैठकर रात का डिनर भी किया। हर्षिता, शिविका और उसके पापा तीनों ही ऋषभ को उनके साथ आकर डिनर के लिए बैठते हुए देखकर थोड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन सभी ऋषभ को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितना मूड और सनकी इंसान है, इसीलिए किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ऋषभ के गुस्से का शिविका पर कोई भी असर नहीं पड़ता, इसीलिए उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम यहाँ पर, वो भी खाने के वक्त, तुम्हें भी भूख लगती है इसका मतलब? शिविका ने हल्के फुल्के अंदाज में ताना मारते हुए कहा। वो बात ऋषभ को इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं लगी क्योंकि वो तो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ सुनता ही रहता है अपनी हरकतों की वजह से।
इसीलिए ऋषभ ने भी उसी तरह मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं, भूख तो नहीं लगती मुझे। मैंने सोचा बस यहाँ बैठकर कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूंगा कि कैसा खाना बनता है आजकल घर में, मुझे भी पता चलेगा। उसकी ये बात सुनकर हर्षिता अपना खाना रोककर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। उसके हंसने पर बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। काव्या भी वहां पर उनके बीच ही बैठी हुई थी। उसने हर्षिता को हंसते हुए देखकर उसका हाथ खींचते हुए कहा, क्या हुआ मासी, ऋषभ ने कोई जोक मारा है क्या जो आपको इतनी हंसी आ रही है? वैसे मुझे तो समझ नहीं आया उसने क्या कहा। काव्या के सवाल सुनकर शिविका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेबी तुम अपना खाना खाओ, और तुम्हारे ऋषभ मामा को मजाक करना भी नहीं आता है। इतना बोलते हुए शिविका ने एक चम्मच में खाना उठाकर काव्या के मुंह में भर दिया, जिससे उसका मुंह तो बंद हो गया। लेकिन हर्षिता को अभी भी हंसी आ रही थी और वो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई बोली, सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन ऋषभ भाई, बट आपको सच में कोई और इससे भी बेकार जोक नहीं मिला क्रैक करने के लिए? कम से कम अच्छा बहाना बनाते थोड़ा। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मान लिया, बहुत ही बुरा जोक था मेरा, लेकिन फिर दांत क्यों दिखा रही हो तुम सब? अब तक हर्षिता की भी हंसी रुक गई और उसने कहा, वो तो बस आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं था, बस इसीलिए मुझे थोड़ी हंसी आ गई, और मैं आपके जोक पर नहीं हंसी, वैसे भी वो जोक था क्या? हर्षिता की बात सुनकर शिविका ने भी ना में अपना सिर हिलाया, तो अब ऋषभ से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी प्लेट में बचा हुआ खाना प्लेट समेत अपने हाथ में उठाया और वहां से सीधा हॉल की तरफ बढ़ गया और सोफे पर आकर अकेला बैठकर ही खाना लगा। लेकिन कुछ सोचकर वो आज अपने कमरे की तरफ नहीं गया।
तभी शिविका के पापा ने कहा, शिविका, मुझे नहीं लगता अब हमें इस लड़के को और ढील देनी चाहिए। तुम देखती हो कैसे बर्ताव करता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी, अचानक से पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या ये तुम्हें कुछ भी बताता है? शिविका के पापा ने काफी सीरियस होकर ये बात कही। उनकी बात सुनकर शिविका ने भी सीरियस होते हुए ऋषभ की तरफ देखा, जो कि वहां सोफे पर अकेला बैठा हुआ अपना बचा हुआ खाना खा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए शिविका बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, वो बस हम सब से थोड़ा सा अलग है और हमारी तरह से नहीं सोचता। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। शिविका ने अपने पापा के हाथ पर हाथ रखते हुए हल्के से अपनी पलकें झपकाईं और फिर उसके बाद सभी अपना अपना खाना खत्म करने लगे। अगले दो दिन बहुत ही ज्यादा बिजी थे और शिविका को ऑफिस में काफी ज्यादा काम था। इस वजह से उसके और करण के बीच ज्यादा कोई पर्सनल बात नहीं हुई, क्योंकि वे इवेंट के काम को लेकर दोनों ही बिजी थे। और इन दो दिनों के लिए शिविका और करण दोनों का ही डिपार्टमेंट अलग हो गया था। जिस डिपार्टमेंट को शिविका हेड कर रही थी, वहीं करण दूसरा काम देख रहा था, और इन दो दिनों के लिए रुद्र भी उन दोनों के साथ ही लगा हुआ था। अगले दिन हर्षिता वहां पर कंपनी ऑफिस के स्टूडियो आई और उसने मेन मॉडल का पूरा चार्ज अच्छे से ले लिया, और सभी उसके प्रैक्टिस से तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। अब बस बारी थी संडे को होने वाले इवेंट में परफॉर्मेंस की। सैटरडे लेट नाइट, ऑफिस में। अगले दिन रात को 8 बजे इवेंट होना था, लेकिन उससे पहले आज ही सारा काम शिविका को खत्म करना था, इसलिए वहां ऑफिस के ज्यादातर लोग ओवरटाइम कर रहे थे। लेकिन अब रात के 9 बज रहे थे, तो सबने एक एक करके वापस अपने घर जाना शुरू कर दिया था। अपना अपना काम खत्म करके सब वहां से निकल गए थे, लेकिन शिविका ने पहले ही सबको बोल दिया था कि कल सुबह 8 बजे ही सबको वहां हॉल पहुंचना है, और बाकी का सारा जितना भी बचा काम हो और जो कुछ भी रह गया हो, सब कुछ वहां पर ही डिस्कस होगा। अब अगले दिन किसी को भी ऑफिस नहीं आना था। शिविका ने अपने केबिन से बाहर की तरफ देखा तो वहां पर अब उसे ना के बराबर लोग नजर आ रहे थे। लगभग पूरा ऑफिस अब तक खाली हो गया था और सबके डेस्क की पर्सनल लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थीं। सिर्फ ओवरऑल पूरी जगह की लाइट ऑन थी, तो वहां पर काफी रोशनी थी। खिड़की से बाहर देखने पर उसे सन्नाटा नजर आया, तो शिविका को लगा कि सब लोग चले गए हैं और उसका काम भी लगभग खत्म हो गया था। उसने अपने वर्किंग ग्लासेस उतारकर वहां टेबल पर साइड में रखे और फिर लैपटॉप बंद करके अपनी चेयर के सिरहाने से सिर टिका लिया। तभी उसे बाहर ऑफिस से कुछ आवाज आई।